प्यारी सात संगत प्यार से बोलिए। सात संगत अभी आप सत्संग का नाम मान रहे हैं, दातार की कृपा होती है तो ऐसे संतों का मिलन होता है जिनमें बैठकर हरि की चर्चा की जाए, प्रभु परमात्मा की महिमा का जिक्र होता चला जाए। क्योंकि सात संगत जैसे कहा है कि सात संगत हो ही जानिए जिते एक को नाम पहचानिए। कहते हैं कि साधु की संगत जो होती है वहाँ केवल नाम की बातें होती है। नाम कौन सा, जैसे रोजी पढ़ते हैं कि नाव तेरा निरंकार है, नाव लइए नरक ना जाइए। और भी कहा है कि जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। निरंकार का जिक्र बार बार, क्योंकि ये निराकार है, इसका जिक्र भगत तभी करते हैं जब ये आत्मा भी निराकार को जान लेती है, प्रभु को भी। फिर सात संगत जब इनका मिलन हो जाता है आत्मा परमात्मा का, फिर सात संगत इसी का ही जिक्र करते हैं। क्योंकि सतगुरु की कृपा से हमें इसकी जानकारी हुई। आप जानते हैं कि विचोला तो ज़रूरी होता है, कोई भी काम दुनिया में होता है छोटे से लेकर बड़ा, बीच में विचोला ज़रूर होता है। चाहे हम बच्चों की रिश्ते भी करते हैं तो बीच में विचोला होता है, चाहे उसका दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। इसी तरह सतगुरु भी विचोला होता है इस आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाला। तभी कहा है कि कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाना। कहते हैं कि मैं अपने इस जो मित्र विचोला है, जो सतगुरु है, इससे मैं कोल कुमाई जाऊं। तो आओ सत्संग केवल कोल कुमाई नहीं, कहने वाले ने तो इतना भी कह दिया, मोती तमंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ, पी तेरी कीमत ना पवे होंगे वड़ा खाना। कहते हैं कि मैं ऐसा मोतियों का मंदिर भी उसार कर तो हीरो जवाहरात से भी बना दूं, फिर भी तेरी महिमा का जिक्र जो है वो मेरे से वर्णन नहीं होता। क्योंकि सात संग जिंदगी में केवल पूर्ण सतगुरु ही चैन दे सकता है, सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है। आप सत्संग दुनिया में ही रहते हैं, दुनिया में कहीं भी जाकर घूम कर देखें, पदार्थों के अंबार लगे हुए हैं, किसी बात की कमी नहीं है, पर फिर भी सत्संग चैन नहीं है। जैसे कहा है कि तूने दिया है सब कुछ पर सबर शुक्र नहीं है। सबर शुक्र तो इंसान के अंदर है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। चाहे कितना भी इसके पास हो फिर भी सांसें इसकी निगाह दूसरी की तरफ होती है कि उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जलन ही जलन, तो सात संगत ये जैसे जलन बढ़ जाती है, नफरत ईर्ष्या बढ़ जाती है, विरोध क्रोध बढ़ जाता है, फिर सात संगत ऐसे महात्मा दुनिया पे आते हैं जो हमें सत दर्श कराते हैं। क्योंकि फिर हम जान जाते हैं कि दातार जो तू दे रहा है इसी में ही भलाई है, इसी में ही सुकून है, इसी में ही चैन है। क्योंकि आप जानते हैं दौलत की सीमा तो है ही नहीं, चाहे लाखों करोड़ों भी हो, अरबों खरबों भी हो, इसका तो पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो गई। ये तो भूख बढ़ती ही चली जाती है। पर सात संगत जिसको भी ये ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है के दातार तू देने वाला है, जितना जितना किसी के भाग्य में लिखा है तूने अवश्य देना है। जितने भी तू दुनिया पे इंसान पैदा किए हैं उनको तू खाना भी देना है, पहनना भी देना है, रहने के लिए जगह भी देनी है। क्योंकि ये इसका विरुद्ध होता है, जान को दे अजान को दे। जो जानता है उसको भी दे रहा है, जो नहीं जानता उसको भी दे रहा है। तो आओ सत्संगत संत महात्मा पदार्थों की साथ संगत बात एक तरफ रख कर भक्ति की तरफ अपने मन को लगाते हैं। आप जानते हैं कि भक्ति जो है यही सुकून देने वाली होती है। पदार्थ तो मिल ही जाते हैं, पदार्थ तो साथ संगत आप जानते हैं कि उनके घर भी होते हैं जो दिन रात डाके लगाते हैं। उनके घरों में भी अच्छी अच्छी इतनी कीमती वस्तु पड़ी होती है। सत्संग पदार्थों की बात तो इसने देना ही देना है, पर ये सत्संग जब भक्ति की तरफ अपने मन को लगा लेते हैं तो फिर सत्संग इन पदार्थों में भी सुख होता है। जैसे कहा कि माया दासी भक्तां केरी तिनगे कमावे कार, कहते हैं ये दासी बनकर सारे कार्य सिद्ध कर देती है। और संसार के लिए क्या बन जाती है कि माया होई नागनी जगतर ही लपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को फिर खाए। कहते हैं जो सेवा करता है उसी को हड़प कर जाती है। आप जानते हैं जब सूरज की तरफ हमारा मुख होता है तो हमारी परछाई पीछे पीछे चलती है। अगर सूरज की तरफ हम पिठ दे देते हैं तो परछाई फिर साथ से आप जानते हैं कि आगे आगे होती है, पर परछाई हाथ में नहीं आती। हाथ में सत्संग परछाई को इंसान देखते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनकी अपनी परछाई आगे पड़ती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो पकड़ी नहीं जाती। वो आगे आगे बच्चा फिर और पीछे पीछे, वो आगे आगे फिर और पीछे पीछे। तो इसीलिए सत्संग संत महात्मा कहते हैं कि जब आपका मुख सूरज की तरफ होगा तो आपको रोशनी रोशनी मिलेगी, आप रोशनी में चलेंगे। आप जानते हैं कि रोशनी में कभी भी किसी को कष्ट नहीं होता। हम चाहे सत्संग कहीं भी चले जाए, रास्ते में जाते हैं उधर सत्संग थोड़े पत्थर भी पड़े होते हैं, नालियाँ भी होती हैं, और भी सत्संग ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो रोशनी में हम बच बचा कर निकल जाते हैं। वही जब अंधेरा होता है तो सास वही कभी नाली में पैर जाता है, कभी गड्ढे में पैर जाता है, कभी सास कोई जो बिजली का खंभा होता है उससे टकरा जाते हैं। चलो वो तो सड़क की बात रही, हम घरों में भी देखते हैं क्योंकि इंडिया से आए हैं, वहाँ तो बिजली बहुत जाती है। तो सास जब बिजली चली जाती है, लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती, तो सत्संग जानते हैं कि कितनी ठोकरें लगती हैं। घर में सामान बड़ा कीमती होता है, उसे हम सुख लेते हैं, पलंग है सुख लेते हैं, उसे भी टकरा जाते हैं, टेबल से भी टकरा जाते हैं, कुर्सी से भी टकरा जाते हैं, द्वार से भी टकरा जाते हैं। तो सत्संग वो क्या कारण है, क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा इतना होता है कि हम कहते हैं कि कोई किसी के हाथ पे हाथ भी लगा दे तो दिखाई नहीं देता। तो आओ सत्संगत, इसीलिए कहा है कि दिया बले अंधेरा जाए। जब दिया जगा लेते हैं तो बैटरी ले ले, कुछ भी दिया जला ले, लैंप जला ले, तो अंधेरा दूर हो जाता है। फिर सब कुछ वो सामान पड़ा हुआ हमें सत्संग वो सुखदाई होता है। इसी तरह सत्संगत इस मन के अंदर जितनी देर तक अंधेरा है तो सत्संग फिर ठोकरें ही ठोकरें हैं, फिर ये ठोकरों का विचार नहीं हो सकता। तभी कहा है कि ज्ञान निरंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। कहा कि हरि की कृपा द्वारा मुझे ऐसा संत महात्मा मिला कि मेरे मन के अंदर प्रकाश हो गया। अभी मुझे पता चल गया कि मैं किस लिए इस दुनिया पे आया हूँ और मैंने क्या करना है। साथ से इसी तरह एक सज्जन ने बात सुनाई महापुरुषों ने, वो सत्संग गाड़ी पे सफ़र कर रहे थे। बम्बे से आए तो दिल्ली आना था, उधर से चले तो रास्ते में सत्संग एक साथ वाली सीट पे बैठे उसी के साथ इसी तरह वचन करने लगे। तो जब इसी तरह वचन होते रहे, गल बात होती रही, तो उन्होंने पूछा महापुरुषों ने, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? कहते हैं बम्बे से आया हूँ तो दिल्ली जा रहा हूँ। उन्होंने फिर दोहरा दिया, कहने लगे मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ से आए हैं? कहने लगा मैं बोल जो रहा हूँ, बम्बे से आया हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। तीसरी दफ़ा जब उसने फिर कहा तो कहता तू सुनता नहीं है, मैं बोल जो रहा हूँ। हाँ फिर सुन ले कि माँ के गर्भ से आया हूँ, मसानों में चला जाऊँगा। तो सत्संग महापुरुष की तो रमझें होती हैं। वो कहते हैं ये शरीर तो किसी का मसानों में गया, किसी का जल प्रवाह हो गया, किसी ने जमीन में दबा दिया। जब ये आत्मा अंदर से निकलेगी वो तो मट्टी रह गई। मैं पूछ रहा हूँ कि ये आत्मा कहाँ जाएगी? तो फिर कहने लगा भाई मुझे नहीं मालूम, कोई बन जाएगी, कुत्ता घोड़ा भैंस गऊ कुछ ना कुछ कीड़ा मकोड़ा कोई पंछी बन जाएगी। तो कहते हैं इससे छुटकारा नहीं पाना। कहते हैं अगर मैं भैंस ना बना तो दूध लोग कहाँ से पिएगा? तो वाओ सत्संगत, ऐसे ऐसे भी इंसान होते हैं कि जो सत्संगत उस जूनी को त्यागते ही नहीं। पर सत्संग ये संत महापुरुष ये तभी कहते हैं कि सतगुरु जब भी दुनिया में आते हैं तो जैसे कहा कि बाँ पकड़ कट लीने जाने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, इस माया के अंधे कुएं से सत्संगत ये बचा लेते हैं, अपना बाजू पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो आओ सत्संगत, जो ऐसी बात जिसके मन में बस जाती है कि सतगुरु ने हमें कितना ये ज्ञान दिया है, नहीं तो सत्संग दुनिया में रहते हुए हमारे से भी कोई पूछता था कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, तो हम कह देते थे कि इसने जाना है, कौन जान सकता है। पर जब सत्संग तो जितनी भी वाणिए या धार्मिक ग्रंथ के रूप में गीता रामायण बाइबल कुरान सत्संग जितने भी ये ग्रंथ है, तो सत्संग जब पढ़ कर देखा तो सत्संग वो तो कहा है कि इंसान अगर तू नहीं जानेगा तो कहा कि निंद्रा भोजन भोग पै ए पस पुरख समान, ज्ञान अधिक किनरते ज्ञान बिना पशु जान। क्या कि अगर तूने जाना नहीं तो तेरी जिंदगी भी पशुओं के समान ही है। फिर सत्संग ऐसे भी आगे फिर वाणी में कह दिया कि जो सत्संगत पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावन अमृत देन, ना भी होने आदमी त्रिक जीवन कर्म करेन। कहा कि पशु जो है वो खल भूसा खा कर भैंस सा गाय कितना अमृत जैसा दूध दे देती है। उसका सत्संगत हम देखें तो गोबर भी पवित्र माना जाता है, बहने चौंका देकर सासें उसको पितर मानती हैं। वही सत्संग गोबर का हम खाना भी सुखा के बना लेते हैं, उसके जला कर उसको, इसी तरह हड्डियां भी काम आ जाती हैं, चमड़े के भी बड़े बड़े सामान बन जाते हैं। तो गोश्त भी उसका खा कर पशु परिंदे छोटे मोटे अपना पेट भर लेते हैं। तो इंसान तेरा क्या काम आता है? ना तेरा चमड़ा काम आता है, ना तेरा विष्ठा तेरा पड़ा होता है, वहाँ सत्संग मुँह ढक कर निकलना पड़ता है। और भी सत्संग कौन सी चीज़ काम आती है, तू किस पे ऊपर मान करता है? हाँ अगर मान करना है तो कहा है कि मान करूँ तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, ये मेरे सतगुरु अगर मान रहे तो तेरे ऊपर मान रहे। और सत्संग ना दौलतों पे मान, ना पढ़ाइयों पे मान, ना सत्संग। मुझे याद है चंद वर्षों की बात कि इसी तरह सत्संगत आपने देखे बलवान भी बड़े, कोई भी बात होती है कहते हैं मुझे जानते नहीं, मेरे शरीर में इतनी शक्ति है मैं दो चार को बगल लेकर ख़त्म कर सकता हूँ। फिर सत्संग कोई ऐसे भी मिलते हैं कहते हैं मेरा पास इतना पैसा है कि कहो तो मैं ये महल्ले का महल्ला कॉलोनी कॉलोनी खरीद सकता हूँ। फिर सत्संग कहते हैं कि इतना मेरे पास इलम है, आप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो सत्संगत क्योंकि मानते इन चीज़ों का तो आप देखते हैं इधर का इधर ही रह जाता है। हम अगर पीछे आज से 50-52 साल सत्संगत देखें तो पाकिस्तान में रहने वाले जो सत्संगत वहाँ, आप जानते हैं कि करोड़ों की कोठियाँ बंगले और किसी बात की कमी नहीं। तो सत्संग दिल्ली में ही देखे फुटपाथ पर बैठकर मूंगफली बेच रहे हैं, केले बेच रहे हैं, भाई वो कहाँ गया पैसा? सत्संग इसने साथ नहीं दिया। इसी तरह सत्संग कोई कहे कि मैं बगल में लेकर दो चार को ख़त्म करता हूँ, तो वो भी सत्संग एक दो दिन बुखार ही चढ़ जाए तो फिर देखो क्या हालत होती है। पानी का गिलास भी उठा कर नहीं पीते, अगर जबरदस्ती लेंगे भी तो दांतों से ठक ठक आएगा। तो सत्संग वो भी बलवान भी वो भी इधर की इधर ही शक्तियाँ हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए ही होती हैं। तो सत्संग इसी तरह ही, और देखते हैं इलम का जो मान करते हैं वो भी सत्संग चंद बस इसी तरह। उधर दिल्ली में भवन पे के पास एक सत्संग बाहर, जैसे मैं पार्क में निकली सैर करने, तो एक लड़का जा रहा था, उसके साथ एक और भी था, पीछे छोटे छोटे बच्चे उसको पत्थर फेंके, कभी उसका कुर्ता खींचे। तो सत्संग पूछा कि क्या है, क्यों बच्चों इसको तंग कर रहे हो, क्या बात है, जो साथ थे मैं क्या है इसको। तो कहने लगे महाराज माता जी ये तो डबल MA पढ़ा हुआ है पर इसका दिमाग थोड़ा सा ऐसे हो गया, आज बावरों की तरह झलों की तरह घूम रहा है। तो आओ साध संगत, ये जितनी भी इंसान कहता है कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है, मैं किसी को क्या समझता हूँ, ये सत्संग सब कुछ इधर का इधर ही रह जाता है। तो साध संगत आप देखते ही हैं गांव में तो एक एक छोटे छोटे टुकड़े पे जमीन के भी कैसे भाइयों भाइयों में भी वैर बढ़ जाता है, तो वो भी सत्संग कोई साथ नहीं कुछ भी नहीं जाता। हम सत्संगत मिसालें तो देते हैं राजो महाराजों की, तो सत्संगत हम सिकंदर की भी मिसाल दे देते हैं कि सिकंदर ने सत्संग आधी आधी दुनिया फतेह की। तो जब अंत समा आया तो मंत्री को बुलाकर कहने लगा कि मंत्री ये जितना भी कीमती सामान है ये मेरे साथ बांध दो। तो वो हंस पड़े, कहने लगे महाराज आपके पास तो एक दिन का भी नहीं जाएगा, एक सुई भी नहीं जा सकती। तो कहने लगा ये मुझे क्यों नहीं पहले बताया। दूसरे को बुला के कहने लगा इसको कोड़े लगाओ, इसने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहने लगा महाराज अभी आप मृत्यु सैया पे लेटे हैं, आपके पांव जो हैं कब्र की तरफ हैं, अभी मुझे कोड़े लगवा रहे हैं, जब आप राजसिंहासन पे बैठे हुए हुक्म चला रहे थे जाने मेरा क्या हाल करते। कहने लगे अच्छा फिर ये बात है, तो जब मुझे कब्र में दफनाओगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि सिकंदर जब दुनिया से गया था तो दोनों हाथ खाली थे। पर सत्संग ये केवल सिकंदर की बात नहीं, ये हम सब की बात है। हम देखते हैं हमारे घरों से भी गए और भी दोस्त मित्र भी गए, संसार में भी देखते हैं जब लेकर जा रहे होते हैं तो सत्संगत कभी किसी के पास कोई उसने गठड़ी साथ दौलत की नहीं रखी होती या जमीन का टुकड़ा नहीं रखा होता, ये सत्संग यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। हाँ साथ जाता है तो केवल ये नाम जाता है, ये निराकार प्रभु परमात्मा जाता है। सत्संग यही साथ देने वाला है और तो कोई भी साथ नहीं देने वाले होते। तो आओ सत्संगत, इसीलिए संत महात्मा बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि ये दातार ने सत्संगत ये गुजरान के लिए हमें चीज़ें दी हैं। गुरु गोविंद सिंह को भी किसी ने सवाल किया कि आपको क्या ज़रूरत है, इतनी शाही ठाट ताना बाना घोड़ा सारा कुछ आपको क्या ज़रूरत है। वो कहने लगे ये तो जीवन के लिए है, जैसे स्त्री जो है ईमान होती है, बेटा निशान होता है, दौलत गुजरान होती है, ये बस इधर के लिए है और तो कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आओ सत्संगत, क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं वो हर वक्त ही यही सत्संग प्रेरणा देते हैं कि जैसे कहा है कि कल्लू आयो आयो ना बोवो बोवो आन रुत नाई मत परम पुलो पुलो, कहा है कि कल युग आ चुका है, अगर बीज डालना है तो नाम का डालो। तो सत्संग जैसे बरसात होती है धरती में पानी गिरता है तो सत्संग उस वक्त कहते हैं जो सियाने लायक सत्संग किसान होते हैं वो एकदम धरती में बीज डाल देते हैं, जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं फिर आएगी तो फिर डाल लेंगे। तो सत्संगत फिर जब उनके इतने खेत लहराते हैं घर में उनके अंदर बाहर दाने के भरे जाते हैं तो फिर सत्संग कहते हम भी बीज डाल देते, हमारी भी खेती इसी तरह लहराती। पर सत्संग कहते हैं कि आप पछताया क्या बने, जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब सत्संग समा निकल जाए तो फिर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आओ सत्संगत क्योंकि ये संत महात्मा तो हर वक्त यही अरदास करते हैं कि दातार वही बोल बुलाना जो तुझे अच्छे लगे, वही कर्म कराना जो तुझे भा जाए, कोई अपनी मन मती ना हो। क्योंकि मन तो सत्संगत आप जानते हैं कि ये बड़ा शरारती है, ये तो सत्संगत कभी तो इतना झुक जाता है कि डंडोत बंदना करता है, कभी सत्संगत गोडों तक भी नहीं पहुंचता। ये मन की अवस्था इतनी ऐसी है कि जैसे कहा कि कभी जीवड़ा ऊप चढ़त है कभी जाए प्याले, लोभी जीवड़ा थिर ना रहे तो चारे कुंटा पाले। कहते हैं कि ये कभी स्थिर नहीं रहा, ये भागता रहता है। तभी कहा कि मन भेजे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास, कहा कि इस मन को गुरु के हवाले कर दे, अगर तेरे कार्य तू अपने सिद्ध रखने हैं तो आओ साथ संगत। यही अरदास प्रार्थना करें, क्योंकि आप जानते हैं समा भी अभी काफ़ी हो चुका है, तो यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, इसी तरह संतों का संग दे रखना, ताकि संतों के संग से बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा बल मिलता है, तो सतगुरु के चरणों में ध्यान भी रहता है, निराकार का सिमरन भी चलता रहता है। तभी कहे कि सही प्यारे मेली जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, तो आओ साथ संग ऐसे प्यारों से बैठना उठना हो कि जिससे मिलने से इसकी याद बनी रहे। सत्संग जी धन्यवाद।